फिर उसी हदीस में आगे क्या आता है, वमन काम रमदाना, और जो खड़ा होता है क्याम करता है रमजान में रात को, मतलब ईमान व इहतसाबन, इधर भी वही दो शर्तें हैं, ईमान और इहतसाब के साथ, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही, माफ कर दिया जाता है जो कि उसके गुनाहों में से होगा। देखिए दो चीजें हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। अगर आप इस हदीस को देखें तो इसमें हमें बहुत खूबसूरत तरीके से दो इबादत के लिए जहनी तौर पे तैयार किया जा रहा है, दिन का रोजा और रात का क्याम। मजे की बात देखिए कि दिन का रोजा फर्ज है, रात का क्याम नफिल है। मैं आज सुबह जब इस हदीस पे गौर कर रही थी तो मैं सोच में पड़ गई, ऐसा क्यों है? या दोनों फर्ज कर दिए जाते हैं, दिन को रोजे रखो रात को क्याम करो, या दोनों को ऑप्शनल रख दिया जाता कि जब वो कर लो या ये कर लो या दोनों कर लो। दिन का रोजा फर्ज और रात का क्याम नफिल है, इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो अपने नोट्स में लिखिए, रात का क्याम जिसमें आप अकेले अपने रब के सामने भी खड़े हैं, मिल के तरावी की सूरत में पढ़ रहे हैं तो वो और बात है, लेकिन नमाज के अंदर कैफियत तो यही होती है ना कि अल्लाह के सामने खड़े हैं, ये आपकी जाती इबादत है। इस इबादत में आप अल्लाह सुबहाना ताला से अपना ताल्लुक जोड़ रहे होते हैं। आप कह लीजिए कि ये आपके मेरे ताल्लुक बिल्ला की दलील है। रात के अंधेरों में वो ही जागेगा जिसको अल्लाह से प्यार होगा, और इसका सारा फायदा आपको होता है। ठीक है, आप दूसरी तरफ रखिए दिन का रोजा। जब आप दिन को रोजा रखते हैं तो क्या इंसानी मामलात में कुछ ना कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपको जो गुस्सा आएगा रोजा रख के बच्चों पर, बच्चों से पूछिए जरा, अम्मी का रोजा हो और ना हो तो क्या फर्क है? या तो खुश होंगे कि अम्मी डांट ही नहीं पा रही, अम्मी में एनर्जी कोई नहीं। हस्बैंड से पूछिए आपका रोजा है तो क्या उनको फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। अल्लाह सुबहाना ताला की सुन्नत क्या है कि अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह में बैलेंस रखवाया है। रमजान के दिनों में हम रातों को इबादत करते हैं तो अपने रब से ताल्लुक जोड़ते हैं, दिन के रोजे में हमारा ताल्लुक बिन नाज मुतासिर होता है। हम जब रोजे रखेंगे तो अपने आप से पूछेंगे कि इस रोजे ने मुझे क्या दिया, और बेहतरीन रोजा वो है कि जिसमें इंसान दूसरों को महसूस भी ना होने दे कि मेरा रोजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब रोजे से होते तो होंठों पे तेल लगा लेते इस ख्याल से कि दूसरों को मेरे रोजे का पता ना चले, हाल बुरा करके बुरे परेशान होके, हाय रोजा हाय रोजा हाय रोजा, रोजा लग रहा है रोजा लग रहा है। किधर लगता है कभी आपने सुना? कोई कहता है ना रोजा लग रहा है, किधर लगे आपको? वो किसी के सर को लग रहा है तो सर माइग्रेन हो जाता है, और किसी के पेट को लगता है तो पेट में बल पड़ रहे हैं। रोजा रखा है तो बच्चे बचपन में आपसे पूछते थे कहाँ रखा है? अलमारी में रखा है, नहीं मुंह में रखा है। सुना मैंने ये सारी बातें, शिकवे नहीं करने आपने। मैंने इंशाल्लाह इस साल का जो रमजान गुजारना है ना, हमने वो गुजारना है जो सहाबा गुजारते थे, क्योंकि हम अल्लाह की किताब में से वो पैगाम लेने के लिए बैठेंगे इंशाल्लाह, कि जो पूरे दीन इस्लाम का खुलासा है। अल्लाह सुबहाना ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के बिल्कुल आगाज में दो दफ़ा मुखातिब किया, और दोनों जगह आप जानते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल्लैला इल्ला क़लीला, ऐ चादर ओढ़ कर लेटने वाले उठिए रातों को जागा करे, पूरी नहीं निस्फ़हु मिन्क़ुस मिन्हु क़लीला, कभी ज्यादा कभी कम थोड़ा बहुत रखें, लेकिन रात का कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह के सामने जाके। इसको आप कह सकते हैं क्याम फिल लैल, जिसको आज में आराम क्यामुल लैल कहेंगे। रमजान की जो तरावी है वो फर्ज नहीं है, लेकिन बहुत रिकमेंडेड है। फर्ज होती तो ना करने वाले गुनाहगार होते। अल्लाह ताला को दुनिया भर के मुसलमानों की रियायत मकसूद थी। कई बेचारे दिन में काम करते हैं, कई मुल्कों में रात होती कोई नहीं, कुछ मुल्कों में रात ही बहुत लंबी होती है, तो यूनिवर्सली इसको अल्लाह ताला ने रख दिया, अपनी खुशी से कर लो। और रोज़ा ऐसा फर्ज है कि कभी छूट भी गए आपने उसको मेकअप करना है। ये मसाइल आपने बहुत दफ़ा सुने हुए, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जब हम दोहराते हैं तो हमें एहसास भी होता है। नमाज छूट गई, आप जानते हैं सिस्टर्स बीमारी की वजह से जो छोड़ती हैं तो नमाज की कज़ा नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम पीरियड्स के दिनों की छुट्टी भी नमाजें नहीं दोहराते थे, लेकिन जो रोज़ा छूटता था उसको दोहराते थे। मैं इसको अक्सर सोचती हूँ, ऐसा क्यों है? हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत तो होगी ना। बहुत बड़ी हिकमत है। देखिए कि नमाज एक दिन में 5, 6 दिन में 30 नमाजें, 7वें दिन आप फारिग हुए और आप नमाज पढ़े, वैसे ही आदत छुट चुकी होती है, सुस्ती आ चुकी होती है, और साथ आपको 35 नमाजें या 30 नमाजें बिजली भी पढ़नी पड़े, तो मेरा ख्याल है लोग अपनी असल नमाज भी छोड़ देंगे। इसके बरक्स रोजे कितने, साल में 5-6 रोजे रखने, नफिल रोजों की सूरत में आप रख सकते हैं। आप उसको पीर जुमेरात के रोजे की नीयत में रख लें। और कितने दिन है, आप देखिए कि 11 महीनों में 5 रोजे अगर रखें तो हर 2 महीने के बाद एक रोजा भी रखें तो आपके पूरे हो सकते हैं, और अल्लाह ने कह दिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से हमें यह पता चलता है कि जब शाबान के आखिरी दिन थे, जैसे अब आजकल हमारे और आपके चल रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि लोगों, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आने वाला है कि जिसमें अल्लाह ने बहुत सारी खैर रख दी है। तुम्हें और आप इस वक्त उस मौके पे खड़े हैं कि जो लोगों को मालदार कर देता है। किसान बीज डालता है ना, तो वो बीज मौके पर डाल दें तो उस साल की फसल बहुत अच्छी होगी, और अच्छी फसल आएगी तो इंशाल्लाह आप आसूदगी से गुजारेंगे। जो बीज डालने के वक्त पे गाफिल हो गया तो आप देख सकते हैं कि बाद में क्या होगा, उसको पूरा साल रोना पड़ेगा। रमजान दिल में ईमान और तकवा का बीज डालने का महीना है। मेरे और आपके लिए ईमान की रिवाइवल के दिन आ रहे हैं, क्योंकि जब हम कुरान पाक सुनेंगे तो हर दिन का सुनना हमें ऐसे फील कराएगा कि यह कुरान हमारे दिल पे नासिल हो रहा है। तो लिहाजा जब दौरे कुरान शुरू होगा तो हम उसके लिए पहले से जहनी तौर पे तैयार होंगे। हमने करना क्या रमजान में, हमने कुरान पाक के वो 5 हकूक अदा करने हैं जो अल्लाह सुबहान तआला के नबी सल्लम की अहादीस की रोशनी में हमें मिलते हैं। इस पर ईमान लाना, इसको सही तरह से पढ़ना, इसी तरह से इसके मानी पे गौर करना, फिर उस पे अमल की कोशिश, और उसको दूसरों से शेयर करना। जब क़यामत का दिन होगा तो रमज़ान का महीना हमसे पूछेगा कि क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या किया था। मैं और आप खुद से पूछें, क्या कुरान के ये 5 हकूक मुझे पता है? पता है तो अमल करती हूँ, और अमल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो दूसरों को इसकी दावत देती हूँ। अल्लाह ताला हमें बहुत वक्त देगा। अब तो देखिए कि दिन भी बहुत लंबे हैं ना, आप सब भी जानते हैं कि रमज़ान में जब हमारा चूल्हा कुछ घंटों के लिए बंद होता है तो क्या होता है, बहुत टाइम मिल जाता है। अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें हर चीज़ को इस तरह से मेंटेन करने का हुक्म दिया है कि अगर हम उसको लेकर साथ चलेंगे तो बहुत सारी खैर होगी। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी कि हम कैसे रमज़ान से फ़ायदा उठाएं। यानी कोई आपसे पूछे कि आप इस रमज़ान को दी बेस्ट रमज़ान कैसे बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कल से हम लोग दौरे कुरान का आगाज़ करेंगे। मैं चंद बातें आपसे पूछ सकती हूँ कि आप में से जितनी भी सिस्टर्स माशाल्लाह हमारे सामने और ऑनलाइन पे भी जो सिस्टर्स मौजूद हैं, क्या उन्होंने पहले कभी दौरे कुरान किया मुकम्मल तौर पे, वो हैंड रेस करें। आप में से जो सिस्टर्स पहले दौरे कुरान कर चुकी हैं, बहुत थोड़े लोग हैं माशाल्लाह। चलिए, ये तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप कहेंगे ये आप इतनी खुश क्यों हो गई, इसलिए पहली दफ़ा का कुरान जो है ना, ये दिल पर बारिश की फुहार की तरह पड़ता है, और मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑडियंस वो होते हैं कि जो पहली दफ़ा सुने। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो पहली दफ़ा सुनते हैं ना, वो आपसे खुद ही बुलवाते हैं। असल में आप बोल रहे होते हैं लेकिन पीछे से उनकी गीली आंखें और उनकी आंखों में एक हैरत, कुरान में ये भी है, ये भी है। तो मैं आपको कुछ बातें अभी से बता दूं, और आपने हर दिन उसको लेके आना है अपने साथ, कि पहला कुरान आपको बस हैरान करेगा। कल से आपकी हैरानी का वक्त शुरू हो रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी जिंदा हस्ती से बात कर रहे हैं। शर्त एक है कि अपने दिल में शौक और जज्बा रखें। आज से ये नियत कर ले, मैंने एक भी दिन मिस नहीं करना। मिस नहीं करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आप उसको पूरी तरह लेंगे। ये आपको आज तो छोटे छोटे मेरे फोल्डर्स आज भी मिले, लेकिन आपके लिए एक स्टडी पैक बना है, वो इंशाल्लाह आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं। तो उसमें आपके लिए कुछ हेल्पिंग थिंग्स हैं, उससे आपने फायदा उठाना है। लेकिन अभी सिर्फ सुनते जाए, आपने इस दफा के रमजान को दौरे कुरान से करने की नियत तो कर ली है ना, तो बस आप समझ लें आपने एक नया रिश्ता जोड़ लिया। ये आपका आपके रब के साथ ताल्लुक होगा। मैं मानती हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी सिस्टर्स हैं, आपके घरों का माहौल भी अच्छा था, आप में से किसी के अल्लाह के ताल्लुक में कमी अभी भी कोई नहीं है। लेकिन कुरान अल्लाह से ताल्लुक को जिंदा कर देता है, एक नया रिश्ता खालिक और मखलूक का, मालिक और ममलूक का, राजिक और मरजूक का, आबिद और माबूद का, ये आपका कायम होने वाला है। आज से लिख ले, एक भी दिन मिस नहीं करना। फिर दूसरी चीज, हर दिन पहले से ज्यादा जोश और जज्बे से आना है। फिर उसके बाद एक और चीज आपने क्या करनी है, पढ़ते हुए सुनते वक्त जो बात आपके दिल पे असर करे उसको नोट करना है। अभी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, आपके लिए इन्होंने एक पैकेज बनाया ताकि आपको वो सारी चीजें पहले प्रोवाइड कर दी जाए जिसका दौराने सबक जिक्र होगा, हाईलाइट कर लें, अच्छा इधर स्टिकी नोट लगा लें, अच्छा इसको अपनी जेम बोर्ड पे लिख लें। तो ये चीजें आपके हाथ में होंगी तो आप उसको फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जो बात आपके दिल को लगे, होती है बहुत सारी होंगी, आप देखिएगा। हालांकि हमारा ये बड़ा क्विक सफर होगा, लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ बातों पे जैसे लगेगा इट्स फॉर मी, ये तो बस अल्लाह मुझे ही कुछ कह रहा है, तो आपने उसको फौरन अपने जेम बोर्ड पे लिख लेना। यकीन कीजिए कि ये यादें जो आपकी कागज पे मुंतकिल हो जाएंगी ना, ये आपको बाद में इतनी खुशी और इतना लुत्फ देंगी कि आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। उसके लिए ये है कि दौरे कुरान में बिल्कुल हम सिंपल तरीके से इसको लेते हैं, सादा कुरान तर्जमे वाला जो भी होगा, मैं आपको दिखाती हूँ इस पैक में क्या है। अगर आपके पास घरों में अपने कोई कुरान पाक है, बड़ी खुशी से आप लोग ला सकते हैं। ये देखिए कि जिस कुरान पाक से तर्जमा मैं पढ़ूंगी वो ये है, तर्जमानुल कुरान इसका नाम है। आपके पास पहले से घरों में है वही लेके आइए, यहाँ से लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं है और चाहते हैं कि सेम चीज लें, तो फिर इसमें ये फायदा होगा कि चूंकि सारे सफ़े एक साथ पलट लें, इस कुरान की काफ़ी खूबियाँ हैं इस एंगल से कि इसके एक तरफ पूरी अरबिक है, दूसरी तरफ पूरी उर्दू है, तो बीच में उलझाव नहीं आता। आप अरबी पढ़ रहे हैं नीचे उर्दू है, कभी कभी मिक्स होता है, नहीं इसको आप स्टोरिकल पढ़ते हैं, ठीक है, अरबी इधर है उर्दू इधर है। फिर इसके बाद दूसरा इसका एक और जो लुत्फ है वो ये कि ये स्पीच के अंदाज में इसका तर्जमा है, इंशाल्लाह जब तर्जमा हम इसका सुनेंगे आपको खुद भी फील होगा। तो जब लफ्ज आपके सामने अपने कुरान के होंगे, समझ तो बात आपको तब भी आएगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क लगे, ठीक है। तो ये कुरान पाक हम यूज करेंगे। अब इसको यूज करने के लिए तरीकेकार क्या होगा कि कुछ चीजें ऐसी हम मार्क किया करेंगे। इस साल चूंकि हमारा दौरे कुरान जो उसका टॉपिक है उम्मते वसत, आप कहेंगे अब ये दौरे कुरान ही एक नई चीज थी, अब आगे से टॉपिक भी ये बता रहे हैं तो ये सब कुछ क्या मसला है। तो उसको समझ लीजिए कि कुरान तो एक ही है, लेकिन कुरान पाक की मिसाल एक कुएं की है। आप उसमें से जितना पानी निकालते हैं ना, एकदम वो लगेगा खाली हो गया, आप चंद घंटे उसको छोड़ दें तो दोबारा उसमें से पानी निकालने जाएंगे तो वो फिर अल्लाह के हुक्म से भरा होगा। नबी सल्लम की एक हदीस है कि इसके अजायब क्यामत तक रहेंगे, और अब जितनी जितनी डिस्कवरीज हो रही है ना दुनिया में उतने इसके अजायब लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर साल इसका एक नया एंगल सामने रखते हैं पढ़ते हुए। इस साल इंशाल्लाह ताला हम जो करेंगे वो क्या है कि उम्मत, लफ्ज़ उम्मत पे बात करें कि अभी इसके बाद मैं थोड़ी सी आपको उसकी वजाहत दूंगी इंशाल्लाह ताला। थक तो नहीं गए अभी? अब मैं ये तो कभी नहीं कहूंगी क्या बोर हो गए, तो कुरान की महफिल में कभी को बोर नहीं होता। टू मैनी थिंग्स लगेंगी तो थोड़ा सा सैड फेस बना दीजिएगा, ऐसे ही ढीला सा, तो मैं समझ जाऊंगी आप थके हुए। लेकिन हम यहाँ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम बिल्कुल एक क्लोज सर्किट में पढ़ेंगे। एक तो कुरान आपको बीच में नजर आएगा, दूसरा फिर जब हम सारे मिलके मशाल्लाह इतने सारे लोग एक चीज को पढ़ेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, तो कुछ आयतों पे मेरी आदत भी है और मैं पर्पसली बोलूंगी कि आप इन आयतों को हाईलाइट कर लें। तो उसके लिए ये आपके स्टडी पैक में 3 रंग के हाईलाइटर्स रखे हुए हैं, वो कौन सा क्या करना है डिफरेंट कलर वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह इसमें आपके लिए ये टैग्स हैं, छोटे छोटे टैग्स हैं। ये चीज़ें आपको घर में खुद भी मिल सकती हैं, कुछ ज़रूरी नहीं आप यहाँ से लें, आपके पास घर में मौजूद है वो जमा कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो नई किताबों का शौक तो होता ही है ना, नया बस्ता, नया यूनिफॉर्म, सब कुछ होता है। तो बहरहाल ये टैग्स भी आपके काम आएंगे। हम कुरान पाक में कुछ जगहों पे टैगिंग किया करेंगे कि ये आयत हमने यहाँ रखी है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत सा जेम बोर्ड और पेन है, ये बेसिकली अब आपके घर जाया करेगा रोज साथ ही। इसमें नोट्स हैं, आपने देख ही लिए, खोलेंगे तो आपको और भी अंदाजा हो जाएगा। हर पारे में से कुछ चीजें जो आप अपने लिए, घर वालों के लिए रिमाइंडर के तौर पे लगाना चाहते हैं आप वो इसमें नोट करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं हमारे यहाँ जैसे ऑटोग्राफ्स लिए जाते हैं, जिस तरह दूसरों को दिए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको इंशाल्लाह ताला फायदा देगी। लफ्ज़ उम्मत पे जो चीज़ें आएंगी हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह इंशाल्लाह ताला इस दौरे कुरान में जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं, मसलन जैसे आप देखिए कि कुलू वशरबू, खाओ और पियो, आप कहेंगे ये हुक्म है, तो मैं थोड़ा सा आपको खुश कर दूँ कि इस कुरान में से आप कुलू वशरबू का हुक्म पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं खाओ और पियो, और कुल जो है ये लफ्ज़ अरबी के हिसाब से आप देखें तो ये क्या है, अमर है, डूस में से है। तो आज के बाद जब आप खाना पकाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं अल्लाह का हुक्म मान रही हूँ, और अल्लाह का हुक्म मानने से क्या होता है, सवाब होता है ना, तो आपको सवाब होगा। हम इंशाल्लाह ताला कुछ रेसिपीज डिस्कस करेंगे। इस साल हमने सोचा कि लोगों को इस गिल्ट में क्यों डाल दें कि हाय खाते ही रहते हैं, पकाते ही रहते हैं, पता नहीं गुना। देखिए आज के दौर का एक बहुत बड़ा अलमिया है, आज ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन आज से पिछले को 20-25 साल से ले लें, लोगों को एक कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, और वो क्या है कि खाना पीना ये दुनियावी काम है, अच्छे कपड़े पहनने तौबा तौबा, देखो जरा दीन वाले हो कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। असल में हमने गुलामी में आंख खोली है, हमने इस्लाम का वो उरूज नहीं देखा, वो उरूज के जब मुसलमान दूसरों के जहनों पे छाए हुए थे। जब भी किसी का गलबा होता है ना तो लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। आज आप देखिए चारों तरफ वेस्टर्न कल्चर का गलबा दिखता है ना, लोग उनके कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उन जैसे स्टाइल, उनके नाम, उन्हीं की चीजों पे, वजह क्या है कि उन्होंने मनवा लिया। बाकी सच है कि अगर आज हम उनसे मरूब हैं तो वो दुनियावी तौर पर डिजर्व करते हैं, सफाई सुथराई से लेकर परफेक्शनिस्ट होना, चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करना वो बहुत अच्छी तरह करते हैं। एक वक्त ऐसा था कि हम ऐसे थे, तो हमने जब उस दौर में आंख खोली कि जब हम पिसे में तो अब बस कोई अच्छी चीज हम इस्लाम के साथ देखते हैं ना तो हमारे दिल में वहम आने लगता है, इस्लाम नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। और दीन के मस्कीन, गरीब, मुल्ला, बेचारे, जूतियां चटकते हुए जाते हैं, मस्जिद में मौलवी साहब के लिए खाने की ट्रे भेज दो, सच्ची बात है कि नहीं है? आज आप खुद अपने आप से पूछिए, जो मोस्टली हम मुसलमानों का इस वक्त ट्रेंड बन चुका है वो क्या है? आपको एक एवरेज घर का अगर नक्शा जहन में रखें तो क्या चीज समझ आती है? मम्मी बाहर टीचर आए हैं, कौन से टीचर आए हैं जिन्होंने बच्चे को साइंस की ट्यूशन पढ़ानी है? मुझे बता सकते हैं कि उस टीचर के आने पे क्या प्रोटोकॉल होता है? ड्राइंग रूम तक खुलता है, डाइनिंग टेबल पे बिठाओ, फिर बड़े अच्छे सलीके से कप चाय का और बिस्किट रख के उनको भेजो, एसी भी लगा दो बेटा, पढ़ो बैठ के, क्योंकि उन टीचर को आपने हो सकता है एक दिन का 500 रुपया देना हो। इसके बरक्स जब बच्चों के मौलवी साहब आते हैं तो उनको मोस्टली कहाँ बिठा दिया जाता है? पीछे बरामदे में बिठा दो, पंखा लगा दो, वहीं शोर है, रिक्शे भी गुजर रहे हैं और सब कुछ है, और मौलवी साहब को वहां रखो ताकि वो बच्चों को पढ़ाए। ये फर्क क्यों आ गया? और ये फर्क एक दिन में नहीं आया, आज हमारा यरमिया। इस साल दारे कुरान में हम अपनी हिस्ट्री के अंदर से कुछ चीजें पढ़ेंगे। पढ़ने से महाराज ये कि वक्त की रियायत के साथ हम उस पर गौर व फिक्र जरूर करेंगे कि हम वो जो लोगों के जहनों पे छाए हुए थे, आज हम दूसरों से मरूब क्यों हो गए। तो गोया कि आप कह लें कि बीइंग अ नेशन, बीइंग अ उम्मत, हमें अपलिफ्ट होना है। और याद रखिए, अल्लाह जिसको कह दे कुन तुम खैर उम्मत है, फिर उसके बेहतरीन होने में कोई शक हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे साथ साथ।